संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 24 अप्रैल 2020 के इस बुलेटिन में शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आमजन व उनके मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखा जाना बेहद जरूरी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैक्सीन व अन्य औजार विकसित करने की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुहिम। कोविड-19 महामारी जलवायु आपदा मुद्दे पर नींद से जगा देने वाली एक अभूतपूर्व घंटी। महामारी का मुकाबला करने के प्रयासों में अनेक देशों में खाद्य संकट बढ़ने की आशंका। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 फैलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए समर्थन में भारी बढ़ोतरी और भारत में उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल पर खास इंटरव्यू। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN News Reader। इस ऐप में बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने नीतिगत उपायों के लिए गुरुवार को एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए मानवाधिकारों पर आधारित एक प्रभावी व समावेशी कार्रवाई पर जोर दिया गया है। महासचिव गुटेरेश ने कहा है कि कोविड-19 महामारी सिर्फ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा नहीं है बल्कि एक मानवीय, आर्थिक और सामाजिक संकट है और ये तेजी से मानवाधिकारों का संकट भी बनता जा रहा है। उन्होंने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कोविड-19 के खिलाफ कार्रवाई और हालात की पुनर्बहाली में मानवाधिकारों की भूमिका को रेखांकित किया गया है।
It is an economic crisis, a social crisis, and a human crisis that is fast becoming a human rights crisis. Human rights cannot be an afterthought in times of crisis. The message is clear. People and their rights must be front and center. We have seen how the virus does not discriminate.
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि संदेश स्पष्ट है, लोग और उनके अधिकार सर्वोपरि होने चाहिए। वायरस अपना संक्रमण फैलाने में लोगों में भेदभाव नहीं करता, लेकिन उसका असर सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सामायिक गहरी कमजोरियों और ढांचागत असमानताओं को स्पष्टता से दर्शाता है। इसलिए ये खामियां समुचित कार्रवाई के जरिए दूर करनी होंगी। हम कुछ समुदायों पर इसका असंगत प्रभाव देखते हैं, नफरत भरे संदेशों का उभरना, निर्बल समूहों को निशाना बनाया जाना और भारी भरकम सुरक्षा बंदोबस्त में निहित जोखिम स्वास्थ्य कार्रवाई को कमजोर बनाते हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में राष्ट्रवाद, लोक लुभावनवाद व निरंकुशता का उभार हुआ है और मानवाधिकारों को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि खतरा वायरस से है, लोगों से नहीं। उधर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ अहमद शहीद ने भी कहा है कि कोविड-19 के फैलाव के मद्देनजर सरकारों को यह ध्यान रखना होगा कि एहतियाती उपायों का इस्तेमाल राजनीतिक या आर्थिक लाभ उठाने के लिए ना किया जाए। साथ ही इस संकट का दोष धार्मिक व जातीय समूहों पर मढ़ने वाले नफरत भरे संदेशों पर लगाम लगानी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और साझीदार संगठनों ने ऐतिहासिक एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी मदद से कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैक्सीन व दवाओं सहित अन्य नए औजार विकसित करने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इस पहल को दुनिया भर से नेताओं, वैज्ञानिकों, मानवीय राहत कर्मियों व निजी क्षेत्र से समर्थन मिला है ताकि वैक्सीन व उपचारों के विकसित होने पर उन्हें जल्द मुहैया कराया जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
इस पहल को एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलरेटर यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी औजारों तक पहुंच को तेज बनाने वाली पहल नाम दिया गया है। इससे महामारी के निदान, उपचार और वैक्सीन को विकसित करने में मदद मिलेगी। यूएन एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने कहा,
टुडे WHO इज प्राउड टू बी यूनाइटिंग विद मेनी पार्टनर्स टू लॉन्च द एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर और The Act Accelerator.
This is a आज कई साझेदारों के साथ एक्ट एक्सेलरेटर की शुरुआत करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन गर्वित महसूस कर रहा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन, निदान और उपचार के विकास, उत्पादन और समान वितरण के लिए ये सहयोग ऐतिहासिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने इस अवसर पर कहा कि कोविड 19 से मुक्त दुनिया के लिए विश्व के इतिहास में सबसे व्यापक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों की आवश्यकता होगी। आंकड़ों को साझा किया जाना होगा, उत्पादन क्षमता को तैयार करना होगा, संसाधनों को जुटाना होगा, समुदायों के साथ संपर्क कायम करना होगा और राजनीति को दूर रखना होगा। कोविड 19 महामारी के अब तक दुनिया भर में 26 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 1,82,000 लोगों की मौत हुई है। इस विकराल स्वास्थ्य संकट से विश्व अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और आवागमन पर भी अभूतपूर्व असर पड़ा है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी हजारों शोधकर्ताओं के साथ महामारी की वैक्सीन विकसित करने की रफ्तार तेज करने के प्रयासों में जुटी है। यूएन एजेंसी ने निदान के लिए एक प्रक्रिया भी विकसित की है जिसका इस्तेमाल कई देश कर रहे हैं। साथ ही वायरस के असरदार उपचार की तलाश में एकजुटता ट्रायल चल रहा है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अधिकांश देशों में ये महामारी अपने शुरुआती चरण में है, दुनिया इस वायरस की चपेट में अभी लंबे समय तक रहेगी। जिन देशों में तालाबंदी या अन्य सख्त पाबंदियां लागू हैं, वहां लोग घरों तक सीमित हो जाने के कारण हताश हैं और अपनी पहली जैसी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। उनके जीवन और आजीविका दोनों पर जोखिम है, लेकिन यूएन एजेंसी ने चेतावनी दी है कि दुनिया जल्द पहले जैसे माहौल में नहीं लौट पाएगी। इस समय सबसे बड़ा खतरा केवल संतुष्ट होकर बैठ जाना है। घर में रहने और शारीरिक दूरी बरते जाने के उपायों से कई देशों में संक्रमण का फैलाव दबाने में मदद मिली है, लेकिन ये वायरस अब भी बेहद खतरनाक है। यूएन एजेंसी के मुताबिक दुनिया की अधिकांश आबादी अब भी इससे संक्रमित हो सकती है, यानी महामारी फिर से बेकाबू हो सकती है, इसलिए सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मां दिवस के अवसर पर ध्यान दिलाया कि विश्वव्यापी महामारी कोविड 19 नींद से जगा देने वाली एक अभूतपूर्व घंटी है, लेकिन इससे सबक लेते हुए ऐसे विकास की दिशा में संसाधन निवेश करने होंगे जिनसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में मदद मिले और टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त हो। एक डिस्पैच के साथ अंशु शर्मा।
यूएन प्रमुख ने माना कि कोरोना वायरस का दुनिया पर भारी और भयावह असर हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगियां बचाने, पीड़ा कम करने और आर्थिक व सामाजिक नतीजों के दंश को दूर करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जलवायु व्यवधान उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जहां से वापसी संभव नहीं होगी। विश्वव्यापी महामारी से पहले ही दुनिया एक आपात स्थिति का सामना कर रही है। उन्होंने कहा ग्रीन हाउस गैसें वायरस की तरह ही राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करती। कोरोना वायरस और अस्तित्व पर जलवायु व्यवधान के खतरे दोनों ही से अपने ग्रह की रक्षा करने के लिए हमें निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोविड 19 की चुनौती से उबरने के लिए हमें एक ऐसे अवसर के रूप में इसे देखने की ज़रूरत है जिससे भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अर्थव्यवस्थाओं को फिर से स्फूर्ति प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता है, लेकिन उसका निवेश स्वच्छ और हरित विकास में करना होगा और उनसे रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। अगर व्यवसायों की मदद के लिए करदाताओं के धन का इस्तेमाल किया जाना है तो इसका इस्तेमाल हरित रोजगारों और टिकाऊ विकास की शर्त के साथ होना चाहिए। यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा कि समाजों की सहनशीलता बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि वित्तीय संसाधन कोयले से हरित अर्थव्यवस्था की ओर मोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधनों को दिए जाने वाले अनुदान समाप्त करने होंगे, प्रदूषण फैलाने वालों को रकम अदा करनी होगी और सार्वजनिक कोष का इस्तेमाल टिकाऊ विकास के सेक्टरों में करना होगा जिनसे पर्यावरण और जलवायु परियोजनाओं को आगे बढ़ाना संभव हो। इसके अलावा वित्तीय प्रणालियों, नीति निर्माण और बुनियादी ढांचे को तैयार करते समय जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का ध्यान रखा जाना होगा। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि इन सब लक्ष्यों को पाने के लिए यह जरूरी है कि दुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में साथ मिलकर काम करे। यूएन महासभा के प्रमुख तिजानी मोहम्मद बांडे ने इस दिवस पर अपने संदेश में प्रकृति के साथ तारतम्यता कायम करने पर जोर दिया है ताकि एक न्याय संगत, टिकाऊ और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के कारण हर एक इंसान के जीवन पर भारी असर हुआ है। अभूतपूर्व चुनौती उत्पन्न हो गई है और ये समझा जाने लगा है कि एकजुटता की भावना ही रक्षा का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानवता केंद्रित समाज के बजाय पृथ्वी केंद्रित वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्रों के निर्माण के जरिए ही मां पृथ्वी का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है।
दुनिया न सिर्फ एक वैश्विक महामारी के खतरे का सामना कर रही है बल्कि मानवीय राहत के मोर्चे पर एक विनाशकारी आपदा से भी जूझ रही है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य राहत एजेंसी WFP के प्रमुख डेविड बीजली ने मंगलवार को वीडियो लिंक के जरिए सुरक्षा परिषद को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी देते हुए ये बात कही। UN एजेंसी के प्रमुख ने ध्यान दिलाया कि हिंसा और अशांति से प्रभावित देशों में लाखों आम नागरिक भूखमरी के कगार पर हैं और अकाल पड़ने की संभावना बेहद खतरनाक और वास्तविक है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
कोविड-19 महामारी के कारण विश्व भर में अस्थायी रूप से भूखमरी का सामना करने वाले लोगों की संख्या इस साल के अंत तक दोगुनी हो सकती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि 13 करोड़ से ज्यादा लोग पहले से ही भूखमरी जैसे हालात का सामना कर रहे हैं और कोरोना वायरस के कारण 13 करोड़ अतिरिक्त लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं, यानी ये संख्या 26 करोड़ से ज्यादा हो जाने की आशंका है। खाद्य एवं कृषि संगठन में निदेशक डोमिनिक बर्जियन ने बताया,
This year report, the 2020 report, basically tells us that even before COVID-19, at the beginning of 2020, we already had very large number of people in severe acute food insecurity. Actually, the
रिपोर्ट हमें बताती है कि COVID-19 से पहले ही इस साल की शुरुआत में गंभीर खाद्य असुरक्षा से पीड़ित लोगों की एक बड़ी संख्या थी। 2017 में जब पहली बार इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, तब से ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। खाद्य संकटों के खिलाफ ग्लोबल नेटवर्क ने यह रिपोर्ट मंगलवार को रोम में जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 55 देशों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग अस्थायी रूप से खाद्य असुरक्षा का शिकार थे और इनमें 60% से ज्यादा लोग अस्थिरता और हिंसाग्रस्त इलाकों में रह रहे हैं। ग्लोबल नेटवर्क ने आशंका जताई है कि खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की वास्तविक संख्या अध्ययन में अनुमानित संख्या से कहीं ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट में पीड़ित लोगों के लिए भोजन सामग्री की आपूर्ति को बरकरार रखने की अहमियत पर बल दिया गया है। मौजूदा संकट के मुख्य कारण हिंसक संघर्ष और अशांति, चरम मौसम की घटनाएं और आर्थिक व्यवधान बताए गए हैं और अब कोविड-19 एक बड़ा खतरा है।
180 से ज्यादा देशों से मिले आंकड़े दर्शाते हैं कि आम जनता में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारी समर्थन है। विश्व भर में कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से इस समर्थन में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लोगों की राय, उनके साथ संवाद व ऑनलाइन सर्वेक्षण के जरिए एकत्र की गई है, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर शुरू की गई मुहिम UN-75 का हिस्सा है। UN-75 मुहिम जनवरी 2020 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों के समाधान तलाश करने की दिशा में आम जनता की राय और सुझाव एकत्र करना है। नतीजों के मुताबिक सर्वे में हिस्सा लेने वाले 95% से ज्यादा लोगों ने वैश्विक मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलजुल कर काम करने पर सहमति जताई है। फरवरी महीने के अंत के बाद से वैश्विक सहयोग के लिए समर्थन में और मजबूती देखने को मिली है। यही वो अवधि है जिसमें कोविड-19 महामारी से विश्व भर में स्वास्थ्य प्रणालियों, अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक मानकों के लिए नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। सर्वे दर्शाता है कि लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति पनपता जोखिम उनकी सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल है और इस वर्ष मार्च महीने की शुरुआत से ये चिंता और ज्यादा गहरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने आशा जताई है कि UN की स्थापना के 75 साल पूरे होने का ये पड़ाव बहुपक्षीय सहयोग पर चिंतन मनन का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने विश्वव्यापी महामारी की चुनौती से तत्काल निपटने और UN की स्थापना के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने में दुनिया को इस समय इसी की जरूरत है। महिला उद्यमिता में निवेश के अवसरों में तेजी लाने के लिए UN इंडिया और भारत सरकार के नीति आयोग ने एक विशेष मंच बनाया है, जो सलाह और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने, वित्तीय और बाजार संबंधों में तेजी लाने व स्टार्टअप निवेश में लैंगिक विषमताओं को कम करने में लगा है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में सोशल इम्पैक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स पर काम कर रहे करण राज चौधरी से बातचीत की।
दुनिया में विमेन एंटरप्रेन्योर्स यानी महिला उद्यमियों को लेकर क्या स्थिति है, खासतौर पर भारत में कितनी बड़ी तादाद में महिला व्यवसायी हैं?
भारत में 14% व्यापार महिलाएं चलाती हैं। ये 14% जो भारत का नंबर है, ये स्थिति बाकी दुनिया से ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि सब जगह जो महिलाएं का व्यापार है वो थोड़ा कम है, पर ये बढ़ रहा है। भारत में भी ये बढ़ रहा है अभी। और अगर आप इनमें से देखिए, ये 14% में से तो 90% माइक्रो एंटरप्राइजेज है, मतलब कि वो काफी छोटे व्यापार हैं जो 2-3 लोगों के साथ महिलाएं चला रही हैं, और उनमें से कोई 80% सेल्फ फाइनेंस है, मतलब कि उन व्यापार में कोई बाहर का पैसा, लोन या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, वो अपने दम पर ही वो छोटे व्यापार चला रहे हैं। और ये काफी बड़ी समस्या है फाइनेंसिंग की, क्योंकि अगर बाहर से पैसा नहीं आता है, अगर वो लोन नहीं लेती हैं, तो उनका व्यापार और बड़ा नहीं हो सकता है। तो एक ये थोड़ी समस्या रही है। मास्टर कार्ड जो एक पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड कंपनी है, काफी बड़ी है, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया था 2 साल पहले 57 देशों का, देखने के लिए कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, और भारत 52 नंबर पर आया था। तो काफी काम रहता है हमें अभी करने के लिए।
इन सब चुनौतियों को लेकर, महिला उद्यमियों को लेकर भारत में संयुक्त राष्ट्र ने क्या कदम उठाए हैं, किस तरह की पहल की जा रही है कि महिला प्रधान व्यवसायों को प्रोत्साहन मिले?
जी, इधर भारत सरकार के साथ, नीति आयोग के साथ संयुक्त राष्ट्र ने एक प्लेटफॉर्म, एक मंच बनाया है, इन्वेस्टर कंसोर्शियम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। इस प्लेटफॉर्म के तहत हम सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए, मेंटरशिप के लिए और फाइनेंसिंग के लिए, जैसे विमेन एंटरप्रेन्योर रजिस्टर कर सकते हैं नीति आयोग के साथ, और बोल सकते हैं कि उन्हें ये इन्वेस्टर कंसोर्शियम से सपोर्ट चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि उनको उनके साथ बातचीत करते हैं, समझते हैं कि उन्हें किस टाइप का सपोर्ट चाहिए, और फिर उन्हें एक 1-to-1 मेंटरशिप कोई एक्सपर्ट या कोई प्रोफेशनल्स के साथ उनकी मैचिंग करवाते हैं, ताकि वो सहायता दे सकें उन्हें।
फिलहाल कोविड संकट मंडराया हुआ है, जिसकी चपेट में दुनिया भर के सभी उद्योग आ गए हैं, महिला उद्योग भी इससे अछूते नहीं है। अब ये स्पष्ट तो है नहीं कि हालात कब तक चलेंगे, ऐसे में क्या कोई रणनीति तैयार की जा रही है जिससे ये व्यवसाय बचे रहे?
अभी जो 3-4 चीजें हम कर रहे हैं वो है, इन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिनारियो प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। सिनारियो प्लानिंग का मतलब कि अगर लॉकडाउन 2 हफ्ते चलता है तो आपके व्यापार पर क्या क्या इम्पैक्ट होगा, अगर लॉकडाउन 2 महीने चलता है, 6 महीने चलता है, 1 साल चलता है, तो क्या कैसा इम्पैक्ट होगा आपके व्यापार पर, और आपको क्या करना चाहिए अभी ताकि आपका व्यापार संभल सके और आप कैश फ्लो कैसे मैनेज कर सके।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए रमजान महीने के दौरान धार्मिक गतिविधियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके जरिए संक्रमण से बचने में मदद मिल सकती है। WHO की यह रमजान गाइड हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। ये गाइड कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अन्य लोगों के लिए भी प्रासंगिक है। साथ ही कोविड-19 महामारी के बारे में दैनिक व विस्तृत खबरें भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी। अब एक दिलचस्प खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में एक तकनीकी अधिकारी और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री स्वाति भार्गव आयंगर ने मेडमोन नामक एक अद्भुत उपकरण बनाया है, जिसके जरिए लोगों को जरूरी दवाएं सही कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। उनकी इस उपलब्धि के लिए फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें अंडर 30 सूची में शामिल किया है। उनका एक इंटरव्यू भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। दोस्तों, कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मानवीय मूल्यों का भी ख्याल रखें, अफवाहों व आधारहीन सूचनाओं पर ध्यान ना दें, اور انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں۔ اب محبوب خان کو اجازت دیجیے۔